लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे कलीसिया के उप याजकों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि याजक वर्ग सुसमाचार और निर्धनों के प्रति सत्यनिष्ठ रहते हुए संपूर्ण कलीसिया के लिए एक स्फूर्तिदायक प्रतीक बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेविका माता मेरी प्रेरणा दत्त की स्पोट्टा के जीवनी पर एक लघु चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। साथियों, हमने विगत सप्ताह के प्रसारण में ईश सेविका माता मेरी बेरनादित की स्पोट्टा के बचपन और उनकी बुलाहट की चुनौती भरी कहानी सुनी थी। आज हम उनके धर्म सामाजिक जीवन और पौत्रता के मार्ग में उनकी यात्रा के बारे सुनेंगे। ईश सेविका माता मेरी बेरनादित की स्पोट्टा छोटा नागपुर की कैथोलिक कलीसिया के लिए एक महान वरदान है। अपनों की सेवा करने की प्रेरणा ने उन्हें समाज के रीति रिवाज से अलग एक नई जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा दी। उनकी सोच, उनका दृष्टिकोण और उनका त्यागमय जीवन हमारे लिए सचमुच प्रेरणादायक है। सिस्टर मेरी बेरनादित ने प्रशिक्षण काल के 8 सालों को सफलतापूर्वक पार करने के बाद 26 जुलाई 1897 को एक पोस्टुलेंट के रूप में संतन्ना के पुत्रों के धर्म संघ रांची में प्रवेश किया और इसी के साथ धर्म समाज की स्थापना भी हुई। क्योंकि धर्म समाज नया था, लोरेटो की धर्म बहनों ने कड़ी मेहनत से उसे आगे बढ़ने में मदद दिया। बेरनादित का आध्यात्मिक प्रशिक्षण लोरेटो धर्म बहनों के संरक्षण में ही हुआ। बेरनादित के साथ और 3 बहनों ने भी संतन्ना के पुत्रों के धर्म समाज में प्रवेश किया। उनके नाम थे सिस्टर अन्ना बेरोनिका, सिस्टर अन्ना सिसिलिया और सिस्टर अन्ना मेरी। ये तीनों ही धर्म बहनें मांडर की थीं और सिस्टर मेरी के अलावा बाकी एक ही परिवार की थीं। 2 साल के प्रशिक्षण के बाद 6 फरवरी 1899 को उन्होंने पहली बार धर्म समाज का परिधान ग्रहण किया और 8 अप्रैल 1901 को प्रथम मन्नत लिया। प्रथम व्रत धारण करने के दिन वे अत्यंत खुश थे। अपनी खुशी का इजहार करते हुए वे इस प्रकार कहती हैं, सर्वशक्तिमान और असीम दयालु ईश्वर के इस महान प्रेम के लिए हम किस तरह उनकी स्तुति करें। उन्होंने हमें अपना बना लिया है। अब हम सच्चाई से कह सकती हैं कि प्रभु यीशु, आप मेरे सर्वस्व हैं और मैं आपकी निज हो गई हूँ। मदर मेरी बेरनादित ने अपने जीवन में हमेशा पौत्र आत्मा की आवाज सुनी और उसी के अनुसार निर्णय लिया। मन्नत लेने के पूर्व बेरनादित और उनकी सहेलियों को लोरेटो धर्म बहनों ने धर्म सामाजिक पोशाक के लिए यूरोपीय पहरावा चुनने की सलाह दी, किन्तु उन्होंने साधारण भारतीय पहरावा चुना। उनका कहना था कि हमारे देश में बहुत गरीबी है, लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारतीय पहरावा के द्वारा हम दुख, महामारी और अत्याचार के समय में दशा दशा के अनुसार अपने लोगों के बीच रहकर काम कर पाएंगे। धर्म समाज के संस्थापक कोलकाता के महाधर्माध्यक्ष पॉल गोथर्स ने धर्म समाज के लिए संविधान की नई पुस्तिका तैयार की, जिसको वे अक्षरशः पालन करने की कोशिश करती थीं। लोरेटो धर्म बहनों के कलकत्ता वापस चले जाने पर उस सुलाइन की धर्म बहनें छोटा नागपुर आई, जिनके साथ मिलकर वे छोटा नागपुर के सुदूर क्षेत्रों में पैदल यात्रा करते हुए गाँव में जाकर सुसमाचार का प्रचार करती और लोगों की सेवा करती थी। ईश सेविका माता मेरी बेरनादित स्वभाव से अत्यंत प्रशंसित थी। वे धीरजवान थी तथा सही निर्णय करना जानती थी। वे होशियार थी बहुत पढ़ती और लिखती थीं। वापसी का संस्कार एवं पौत्र मिस्सा में नियमित एवं बड़ी भक्ति से भाग लेती थी, मानो कि वह उनके जीवन का अंतिम बार हो। वे सब कुछ को यीशु के प्रेम से करती थीं। हर परिस्थिति में ईश्वर की इच्छा पहचानती और सब कुछ के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती थीं। उन्होंने अपने जीवन में दूसरों से मिले हर छोटी चीज को भी कृतज्ञता से स्वीकार किया। उन्होंने कष्टों को हमेशा सकारात्मक भाव से स्वीकार किया। वे यीशु को गहराई से जानना, पूरी शक्ति से प्यार करना और निकटता से उनका अनुसरण करना चाहती थी। इस प्रकार यीशु के अनुसरण में वे धर्म बहनों की एक महान आदर्श हैं। जेसुइट मिशनरियों के मार्गदर्शन में संत इग्नासियुस की आध्यात्मिकता से प्रेरित होकर उन्होंने उत्साह, गतिशीलता, पवित्रता और समर्पण का अभ्यास किया। जीवन के अंतिम दिनों में उन्हें सोसो में बीमारी से ठीक होने के लिए रखा गया था। गंभीर रूप से बीमार होने के कारण वे शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो गई थीं। बाद में उन्हें रांची स्थित मूल मठ में लाया गया। उन्हें असहाय पीड़ा थी, किंतु कभी शिकायत नहीं की। वे ईश्वर की योजना के विपरीत कभी नहीं जाना चाहती थी और अपने हर दर्द को यीशु को चढ़ाया। वे अक्सर कहा करती थीं, यीशु की पीड़ा के सामने मेरी पीड़ा बहुत कम है। अपने जीवन के अंतिम समय में उसने महसूस किया कि यीशु उन्हें बुला रहे हैं, जिसके लिए वे बहुत पहले से तैयार थीं। अपने कष्टों के बीच एक गीत गुनगुनाया करती थीं, मैं आपके स्वागत की ध्वनि सुनती हूँ। परलोक सिधारने के कुछ सप्ताह पहले उसने अपनी आवाज खो दी थी। वृद्धावस्था एवं टीबी बीमारी के कारण माता बर्नादेत ने 83 साल की उम्र में 16 अप्रैल 1961 को संत अन्ना के मूल मठ में अंतिम सांस ली। उन्होंने यीशु के प्रेम से और आत्माओं की मुक्ति के लिए अपनी प्रार्थना, प्रायश्चित, सेवा और त्याग तपस्या द्वारा संत अन्ना धर्म समाज एवं कलीसिया को 64 सालों तक अपनी सेवाएं दी। कैथोलिक कलीसिया ने उनके विरोचित सद्गुणों को मान्यता देते हुए 7 अगस्त 2016 को उन्हें ईश सेविका घोषित किया। वे प्रथम आदिवासी हैं जिन्हें छोटानागपुर में ईश सेविका घोषित किया गया है। श्रोताओ, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेविका माता मेरी बर्नादेत की जीवनी पर एक लघु चर्चा सुन रहे थे।
चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटक क्रोध का शिकार। लेखक हैं माइकल होजेस। श्रोताओं, मनुष्य का जीवन भावना प्रधान होता है। हम सब भावों से संचालित होते हैं। प्रेम, घृणा, क्रोध, क्षमा, हार जीत, श्रद्धा, संदेह का महत्व भावनाओं से ही होता है। क्रोध, गुस्सा, आवेश जैसे शब्द हमारे मन की उस अवस्था को बताते हैं जहां हम आपा खो चुके होते हैं। हमारी बुद्धि विवेक का ह्रास हो जाता है और हम पूरी तरह से मन के नियंत्रण में आ जाते हैं। गहराई से देखा जाए तो क्रोध केवल भावातिरेक की स्थिति है। जब भी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, अपेक्षा पर कोई खरा नहीं उतरता या फिर अहंकार को चोट पहुंचती है, तब ऐसी अवस्था में क्रोध का जन्म होता है। क्रोध एक ऐसी शक्ति है जिसका खर्च होना जरूरी है। जो शक्ति बिना खर्च की हुई हमारे अंदर रह जाती है, वह ग्रंथि या बीमारी बन जाती है। अतः उस शक्ति का निष्कासन चाहिए। निष्कासन दो तरह से होता है, एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक। क्रोध का नकारात्मक उपयोग और क्रोध को पैदा करेगा। क्रोध की श्रृंखला तभी टूटेगी जब क्रोध का कोई सकारात्मक या सृजनात्मक उपयोग करे। जैसे कोई खाद लाता है, उससे दुर्गंध निकलती है, उस खाद को माली पौधे में लगाता है, पौधों के नसों में से होकर वही खाद की गंदगी फूलों की सुगंध बन जाती है। इसलिए कभी बुरा मत मानिए कि आप क्रोधी हैं। आप अपनी इस शक्ति का सकारात्मक प्रयोग कीजिए। जो आप में बुरा दिखता है, वही सुगंध में फूलों में परिणत हो जाएगा। आशा है आज का नाटक इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो लीजिए, प्रस्तुत है माइकल होजेस का लिखा नाटक क्रोध का शिकार।
चलो अंजू संजू, खाना खा लो। खाना तैयार हो गया है?
आई मम्मी।
जल्दी आओ तुम लोग।
बस ये चैप्टर खत्म करके आ रही हूँ।
नहीं, देर हो गई। क्या कर रहे हो यहाँ पर? ये लड़का लड़की अभी तक यहाँ पर नहीं आए। अरे अंजू, तेरे चैप्टर खत्म नहीं हुआ क्या अभी तक? और संजू, तू क्या ढूंढ रहा है यहाँ पर? मैं खाने के लिए कब से बुला रही हूँ तुम लोगों को, सुनते क्यों नहीं हो?
अरे मैं आ जाऊंगा ना माँ, मेरा दिमाग मत खाओ।
अरे कैसा लड़का है, मैं खाने के लिए कह रही हूँ और ये न जाने किस बात का गुस्सा मुझ पर निकाल रहा है यहाँ पे।
चलो मम्मी, मेरा तो चैप्टर खत्म हो गया। भैया तुम क्या ढूंढ रहे हो?
तू अपना काम कर, अपना काम। तू आधी रोटी पर दाल मत ले।
मम्मी भैया को देखो तो, मैं तो सीधे पूछ ही रही हूँ और इसे बेकार ही गुस्सा आ रहा है।
अरे बेटा, अब तू खाना खाने चलेगा भी या नहीं?
खा लूंगा मैं खाना वाना, पहले मुझे मेरी चीज ढूंढ लेने दो।
अरे मगर पता तो चले कि तू ढूंढ क्या रहा है यहाँ पर, कितनी देर से ढूंढ रहा है ये सब कुछ।
मैंने भी पूछा तो नहीं बता रहा है।
अरे तू बोलेगा भी या यूं ही गूंगा बना रहेगा?
मैं अपनी सीडी ढूंढ रहा हूँ। तू
अरे तो बाद में ढूंढ लेना बेटा, तेरी सीडी कहीं भागी जा रही है क्या यहाँ से?
मुझे वो अब भी वो गाना सुनना है।
अजीब लड़का ये भी।
कौन सी सीडी ढूंढ रहे हो भैया तुम?
पुराने गाने की। तुझसे मतलब?
अरे
मतलब है भैया, क्योंकि वो तुम्हारे पुराने गाने वाली सीडी तो मैंने अपनी एक सहेली को सुनने के लिए दी है।
क्या, अपनी सहेली को दे रखी है और वो भी मुझसे बिना पूछे? पता है मैं कितनी मुश्किल से उसको ढूंढ कर खरीद कर लाया था, और तूने उस, अब मैं तेरे को क्या बताऊं, बिना पूछे ही अपनी सहेली को सुनने दे दिया।
अरे तो इसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है रे बेटा?
क्यों क्यों ना करूं मैं गुस्सा?
अरे
मुझसे बिना पूछे मेरी चीज को ले जाए और मैं कुछ ना कहूं, बस देखता रहूं।
मीरा सीडी सुनकर कल दे देगी भैया।
मगर मेरा मूड तो उस सीडी को सुनने का अभी हो रहा है ना।
अब बोली तो है अंजू, कल मीरा ला देगी। चल तू अपना मूड ठीक कर। तो अब
मूड क्या ठीक कर ले? अरे अगर ये मुझसे पूछकर सीडी देती तो मैं यूं ही उसको सुनने का अपना मूड तो नहीं बनाता।
तो अब कल तो मीरा ला ही देगी ना, तब जी भर कर सुन लेना तू, ठीक है?
और अगर कल वो सीडी पर स्क्रैच लगा कर ले आई तो?
अरे 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 तू कैसी बात करता है रे बेटा, एक दिन में वो स्क्रैच लगा कर ले आएगी क्या? और अभी उसने कौन सा स्क्रैच लगा ही दिया है कि तू उससे इतना गुस्सा उबल रहा है।
वाह मम्मी वाह, मतलब जब वह स्क्रैच लगा दे सीडी पर तब मैं चीखू चिल्लाऊं?
अरे सचमुच तो बड़ा अजीब लड़का हो गया है, तेरा गुस्सा तो हरदम तेरी नाक पर चढ़ा रहता है।
ठीक है अंजू, अब छोड़ूंगा तो मैं तेरी सीडियों को भी नहीं।
अरे
और तू अब देख मैं तेरी सीडियों के साथ क्या करता हूँ।
मम्मी भैया को देखो ना, गुस्सा करने की भी हद होती है, मगर संजू भैया का गुस्सा तो।
चल अब बस कर तो संजू तू।
क्यों मम्मी, आप हर बार अंजू का साइड क्यों लेती है? अगर वो आपकी बेटी है तो क्या मैं आपका बेटा नहीं?
दोनों ही मेरे बेटा बेटी हो, मगर अंजू तेरे जैसे बेकार का गुस्सा नहीं करती है।
क्यों नहीं, ये तो बड़ी भोली है ना भोली।
तुम्हारी तरह नहीं कि अपने गंदे गुस्से में ना घर वाले देखो ना बाहर वाला।
तो मैंने तुम्हें ऐसा क्या कर दिया या क्या कह दिया?
संजू ये बात तो तेरी बिल्कुल गलत है, अंजू बिल्कुल ठीक कह रही है कि तू घर वालों पर भी ऐसा गुस्सा करता है जैसे बाहर वालों पर करता है। तुझे इतना फर्क तो पता होना चाहिए ना कि कौन घर वाला और कौन बाहर वाला है। हा?
तो फिर गलत काम करके मुझे गुस्सा भी मत दिलाया करो। मैं किसी का कुछ गलत करके क्या उसका गुस्सा दिलाता हूँ?
इतना गुस्सा मत कर
संजू भैया, कोई किसी को गुस्सा दिलाता नहीं है, गुस्सा तो भीतर की चीज होती है।
सही बात है बेटी, जब तक उकसाव नहीं भीतर का गुस्सा बाहर नहीं आता है।
मगर गुस्सा तो होता तो सब में है ना?
जरूर, मगर किसी में कम होता है और किसी में ज्यादा। जैसे तेरे अंदर तो दुनिया भर का गुस्सा भरा हुआ है।
अगर भरा है तो भरा ही रहने दो।
अरे
अगर किसी को मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी किसी की परवाह नहीं है।
इसको
ये तो कोई बात नहीं हुई भैया, सबके अपने अपने जीने के तरीके होते।
तो जियो ना अपने अपने तरीके से, मगर किसी और को डिस्टर्ब क्यों करते हो?
बेटा समझौता और सामंजस्य ही जिंदगी का दूसरा नाम है, समझा तू? इसलिए सभी को अपने अपने जीवन में समझौता करना पड़ता है और सामंजस्य भी रखना
देखो,
पड़ता है।
मम्मी अपने से बात ये सब नहीं होता। ये कौन सी बात हुई कि गलत काम करके कोई और समझौता मैं करूं, सामंजस्य मैं बिठाऊं?
इसी का नाम तो जिंदगी है ना, सभी आपस में गलतियां भी करते हैं और आपस में सामंजस्य भी बैठाते हैं। सुनता क्यों नहीं, समझता क्यों नहीं तू किसी बात को?
लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ।
एक बात हमेशा याद रखना बेटा, जो धारा के विपरीत बहना चाहता है वो हमेशा कठिनाई में पड़ता है, वो हमेशा दुख ही पाता है।
मगर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ मम्मी, मुझे धारा के विपरीत बहना आता है।
तो फिर ये चीखना चिल्लाना और ये गुस्सा क्यों? फिर शांति और आराम से क्यों नहीं बहते तुम्हारे धारा के विपरीत?
तुम लोगों से तो बात करना ही बेकार है और इस घर में टिकना भी बेकार।
अरे आप कहाँ चला तू?
बाहर दोस्तों में, कम से कम दिमाग तो ठीक रहेगा।
अरे तो खाना तो खा जा।
पेट तो आपकी बातों से ही भर गया मम्मी।
अरे सुन तो।
जाने दो मम्मी, भूख लगेगी तो रात को लौटकर अपने आप ही खाना परोसकर खा लेंगे भैया।
कल इसका एक जगह इंटरव्यू भी है, न जाने क्या करेगा ये लड़का कल।
अभी भैया गुस्से में है मम्मी, इस समय वो तैयारी क्या करेगा।
हो सकता है फिर कि ये नौकरी उसे मिलती भी हो तो ना मिले। सुनो ये संजू को आजकल न जाने क्या होता जा रहा है, गुस्सा तो उसके नाक पे रहता है हमेशा।
कभी कभी संजू अपनी जगह ठीक भी होता है, सुन रही हो आशा? लेकिन फिर भी अगर उसे दुनिया के साथ चलना ही है तो समझौता तो करना ही पड़ेगा।
मगर पापा उसका कहना है कि वो ऐसा नहीं करेगा।
तो तकलीफ भी पाएगा अंजू, कहाँ है वो, दिखाई नहीं दे रहा। सुबह इंटरव्यू भी था ना आज उसका, कहाँ है, कहाँ वो?
अपने कमरे में है, बहुत गुस्से में है।
बुलाओ उसे।
संजू, ए संजू।
बोलिए पापा।
संजू आज तुम्हारा इंटरव्यू था, क्या हुआ, कैसा रहा इंटरव्यू?
इंटरव्यू कैसा रहेगा पापा, जब इंटरव्यू लेने वालों को ही ये पता नहीं कि वे क्या और क्यों पूछ रहे हैं, तो इंटरव्यू देने वाला क्या जवाब देगा?
ऐसा क्या पूछ लिया था उन लोगों ने तुमसे?
वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपको काम करने का कोई अनुभव तो है ही नहीं, हम आपको कैसे ले ले।
फिर तुमने क्या कहा?
मैंने यही कहा कि आप लोगों का प्रश्न ही गलत है, क्या आप लोगों को इतना भी पता नहीं कि माँ के पेट से कोई भी काम सीख कर नहीं आता। इसके बाद मैं तो उठकर चला आया पापा।
गुड, मगर ये तो बताओ ऐसी कितनी जगह ऐसे छोड़कर आओगे तुम और कब तक ऐसे ही रहोगे, ऐसे ही भटकोगे?
मगर पापा
जीवन में जीवन भर जो क्रोध या गुस्से का शिकार बना रहता है वह पाता कुछ नहीं बेटा, खोता ही खोता जाता है, समझे तुम?
जी सॉरी पापा।
इसलिए बेटा मेरी दो बातें हमेशा ध्यान रखना, एक तो जीवन में समझौता करके परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाओ, और दूसरा ये कि स्वयं क्रोध का शिकार बनने की बजाय क्रोध को अपना शिकार बनाओ, वरना जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, खाली हाथ आकर खाली हाथ ही चले जाओगे, समझे तुम?
जी पापा मैं समझ गया।
क्रोध का शिकार, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटक सुना। इस नाटक के कलाकार थे अर्पना सिंह, मेरी प्रीति जोजो, पीटर जमरा और माइकल होजेस। इंदौर के सत्य प्रकाशन की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।